मत्ती की मार्फत इंजील बाब 13। उसी दिन ईसा घर से निकलकर झील के किनारे बैठ गया। इतना बड़ा हुजूम उसके पीछे जमा हो गया कि आखिरकार वो एक कश्ती में बैठ गया, जबकि लोग किनारे पर खड़े रहे। फिर उसने उन्हें बहुत सी बातें तमसीलों में सुनाई। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। जब बीज इधर उधर बिखर गया तो कुछ दाने रास्ते पर गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां मिट्टी की कमी थी, वो जल्द उग आए क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं थी। लेकिन जब सूरज निकला तो पौधे झुलस गए और चूंकि वो जड़ न पकड़ सके इसलिए सूख गए। कुछ खुदरव कांटेदार पौधों के दरमियान भी गिरे, वहां वो उगने तो लगे लेकिन खुदरव पौधों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें फलने फूलने न दिया, चुनांचे वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसे दाने भी थे जो जरखेज़ ज़मीन में गिरे और बढ़ते बढ़ते 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना तक ज़्यादा फल लाए। जो सुन सकता है वो सुन ले। शागिर्द उसके पास आकर पूछने लगे, आप लोगों से तमसीलों में बात क्यों करते हैं? उसने जवाब दिया, तुमको तो आसमान की बादशाही के भेद समझने की लियाकत दी गई है, लेकिन उन्हें ये लियाकत नहीं दी गई। जिसके पास कुछ है उसे और दिया जाएगा और उसके पास कसरत की चीज़ें होंगी, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए मैं तमसीलों में उनसे बात करता हूँ, क्योंकि वो देखते हुए कुछ नहीं देखते, वो सुनते हुए कुछ नहीं सुनते और कुछ नहीं समझते। उनमें यशायाह नबी की ये पेशगोई पूरी हो रही है, तुम अपने कानों से सुनोगे मगर कुछ नहीं समझोगे, तुम अपनी आँखों से देखोगे मगर कुछ नहीं जानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल बेहिस हो गया है। वो मुश्किल से अपने कानों से सुनते हैं, उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर रखा है। ऐसा न हो कि वो अपनी आँखों से देखें, अपने कानों से सुने, अपने दिल से समझें, मेरी तरह रुजू करें और मैं उन्हें शिफा दूं। लेकिन तुम्हारी आँखें मुबारक हैं क्योंकि वो देख सकती हैं और तुम्हारे कान मुबारक हैं क्योंकि वो सुन सकते हैं। मैं तुमको सच बताता हूँ कि जो कुछ तुम देखते रहे बहुत से नबी और रास्तबाज उसे देख ना पाए, अगरचे वो इसके आर्जुमंद थे, और जो कुछ तुम सुन रहे हो उसे वो सुनने न पाए, अगरचे वो इसके ख्वाहिशमंद थे। अब सुनो कि बीज बोने वाले की तमसील का मतलब क्या है। रास्ते पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो बादशाही का कलाम सुनते तो हैं लेकिन उसे समझते नहीं। फिर इब्लीस आकर वो कलाम छीन लेता है जो उनके दिलों में बोया गया है। पथरीली ज़मीन पर गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनते ही उसे खुशी से कबूल तो कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते और इसलिए ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते। जो ही वो कलाम पर ईमान लाने के बाद किसी मुसीबत या इज़ार-ए-साई से दोचार हो जाएं तो वो बरगश्ता हो जाते हैं। खुदरों कांटेदार पौधों के दरमियान गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम सुनते तो हैं लेकिन फिर रोज़मर्रा की परेशानियां और दौलत का फरेब कलाम को फलने फूलने नहीं देता, नतीजे में वो फल लाने तक नहीं पहुंचता। इसके मुकाबले में जरखेज़ ज़मीन में गिरे हुए दाने वो लोग हैं जो कलाम को सुनकर उसे समझ लेते और बढ़ते बढ़ते 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाते हैं। ईसा ने उन्हें एक और तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही उस किसान से मुताबिकत रखती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बो दिया, लेकिन जब लोग सो रहे थे तो उसके दुश्मन ने आकर अनाज के पौधों के दरमियान खुदरव पौधों का बीज बो दिया, फिर वो चला गया। जब अनाज फूट निकला और फसल पकने लगी तो खुदरव पौधे भी नज़र आए। नौकर मालिक के पास आए और कहने लगे, जनाब क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो फिर ये खुदरव पौधे कहाँ से आ गए? उसने जवाब दिया, किसी दुश्मन ने ये कर दिया है। नौकरों ने पूछा, क्या हम जाकर उन्हें उखाड़ें? नहीं, उसने कहा, ऐसा न हो कि खुदरों पौधों के साथ साथ तुम अनाज के पौधे भी उखाड़ डालो। उन्हें फसल की कटाई तक मिलकर बढ़ने दो। उस वक्त मैं फसल की कटाई करने वालों से कहूँगा कि पहले खुदरों पौधों को चुन लो और उन्हें जलाने के लिए गट्ठों में बांध लो, फिर अनाज को जमा करके गोदाम में लाओ। ईसा ने उन्हें एक और तमसील सुनाई, आसमान की बादशाही राई के दाने के मानिंद है, जो किसी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। गो ये बीजों में सबसे छोटा दाना है, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये सब्जियों में सबसे बड़ा हो जाता है, बल्कि ये दरख्त सा बन जाता है और परिंदे आकर उसकी शाखों में घोंसले बना लेते हैं। उसने उन्हें एक और तमसील भी सुनाई, आसमान की बादशाही खमीर की मानिंद है, जो किसी औरत ने लेकर तकरीबन 27 किलोग्राम आटे में मिला दिया। गो वो उसमें छुप गया, तो भी होते होते पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर बना दिया। ईसा ने ये तमाम बातें हुजूम के सामने तमसीलों की सूरत में कहीं। तमसील के बगैर उसने उनसे बात ही नहीं की। यूं नबी की ये पेशगोई पूरी हुई कि मैं तमसीलों में बात करूंगा, मैं दुनिया की तख्लीक से लेकर आज तक छुपी हुई बातें बयान करूंगा। फिर ईसा हुजूम को रुखसत करके घर के अंदर चला गया। उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, खेत में खुदरों पौधों की तमसील का मतलब हमें समझाएं। उसने जवाब दिया, अच्छा बीज बोने वाला इब्ने आदम है, खेत दुनिया है, जबकि अच्छे बीज से मुराद बादशाही के फर्जंद हैं। खुदरों पौधे इब्लीस के फर्जंद हैं और उन्हें बोने वाला दुश्मन इब्लीस है। फसल की कटाई का मतलब दुनिया का अख्ताम है, जबकि फसल की कटाई करने वाले फरिश्ते हैं। जिस तरह तमसील में खुदरों पौधे उखाड़े जाते और आग में जलाए जाते हैं, उसी तरह दुनिया के अख्ताम पर भी किया जाएगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेज देगा और वो उसकी बादशाही से बरगश्तगी का हर सबब और शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाले हर शख्स को निकालते जाएंगे। वो उन्हें भड़कती भट्टी में फेंक देंगे, जहां लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे। फिर रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की तरह चमकेंगे। जो सुन सकता है वो सुन ले। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है। जब किसी आदमी को उसके बारे में मालूम हुआ तो उसने उसे दोबारा छुपा दिया। फिर वो खुशी के मारे चला गया, अपनी तमाम मिल्कियत फरोख्त कर दी और उस खेत को खरीद लिया। नेज़ आसमान की बादशाही ऐसे सौदागर की मानिंद है, जो अच्छे मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक नहायत कीमती मोती के बारे में मालूम हुआ तो वो चला गया, अपनी तमाम मिल्कियत फरोख्त कर दी और उस मोती को खरीद लिया। आसमान की बादशाही जाल की मानिंद भी है। उसे झील में डाला गया तो हर किस्म की मछलियाँ पकड़ी गईं। जब वो भर गया तो मच्छेरों ने उसे किनारे पर खींच लिया। फिर उन्होंने बैठकर काबिल इस्तेमाल मछलियाँ चुनकर टोकरियों में डाल दीं और नाकाबिल इस्तेमाल मछलियाँ फेंक दीं। दुनिया के अख्ताम पर ऐसा ही होगा। फरिश्ते आएंगे और बुरे लोगों को रास्तबाजों से अलग करके उन्हें भड़कती भट्टी में फेंक देंगे, जहां लोग रोते और दांत पीसते रहेंगे। ईसा ने पूछा, क्या तुमको इन तमाम बातों की समझ आ गई है? जी, शागिर्दों ने जवाब दिया। उसने उनसे कहा, इसलिए शरीयत का हर आलिम जो आसमान की बादशाही में शागिर्द बन गया है, ऐसे मालिक मकान की मानिंद है जो अपने खजाने से नए और पुराने जवाहर निकालता है। ये तमसीलें सुनाने के बाद ईसा वहाँ से चला गया। अपने वतनी शहर नासरत पहुँचकर वह इबादत खाने में लोगों को तालीम देने लगा। उसकी बातें सुनकर वो हैरत ज़दा हुए। उन्होंने पूछा, इसे ये हिकमत और मौजज़े करने की ये कुदरत कहाँ से हासिल हुई है? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या उसकी माँ मरियम नहीं है? और क्या उसके भाई याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? क्या उसकी बहनें हमारे साथ नहीं रहती? तो फिर इसे ये सब कुछ कहाँ से मिल गया? यूं वो उससे ठोकर खाकर उसे कबूल करने से कासिर रहे। ईसा ने उनसे कहा, नबी की इज्जत हर जगह की जाती है सिवाय उसके वतनी शहर और उसके अपने ख़ानदान के, और उनके ईमान की कमी के बास उसने वहाँ ज़्यादा मोजज़े न किए।